ओम शांति। आज 23 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है। मुकदमा चल रहा है कोई? मुकदमा किस बात का है कि आप पर दुख हो रहे हैं, है नहीं? बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते, अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और सबको वापस घर जाना है। प्रश्न, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा रोजाना बार बार क्यों देते
रहते?
रोजाना चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? रोजाना एक दिन बता दिया, दो दिन बता दिया, तीन दिन बता दिया, सिर खा रखा है। रोजाना एक ही बात बताया जाता है, तोते की तरह रटवा रहा है। उत्तर, क्यों? क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, एक दो चार पांच दस नहीं, सारे मरेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, उस समय स्थिति एक रस रहे, कुछ भी हो जाए मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये बात बुद्धि में बिठाने के लिए, निर्भय बनाने के लिए, निश्चिंत बनाने के लिए ये बाबा रोजाना समझाते। जैसे सेना में रोजाना पाठ पढ़ाया जाता है, तुम देश के नाम पर मर गए तो भी तुम कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। उनको कहा जाता है तुम्हें 72 हूरों में, पाकिस्तान वाले समझाते, 72 हूरों का देश मिलेगा, या जन्नत में तुम्हें शराब मिलेगी और ये मिलेगा और वो मिलेगा, तुम मर जाओ बस। हर एक अपने अपने तरीके से पट्टी पढ़ाने पे लगा हुआ है और बाबा भी आया है पट्टी पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसे मालूम है कि फाइनल युद्ध होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध, अंतिम विश्व युद्ध होना है। और उसके साथ खाली युद्ध ही नहीं, युद्ध तो सफाई करने के लिए है, उससे पहले गृह युद्ध चलेंगे और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, चारों तरफ नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। अब कहीं पर कोई दब रहा है, मर रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, पानी में डूब रहा है, पता नहीं क्या क्या किसके साथ क्या क्या हो रहा है, ये सारी कैसी भी परीक्षा आखिरी समय किसका कैसा भी आए, उस समय अवस्था खराब नहीं। सब दृश्य देखते भी मिरवा मौत मलुक का शिकार, शिकारी की तो जिसका शिकार हुआ वो तो मर गया बेचारा, उसका मौत आई, परंतु मलुका के लिए, शिकारी के लिए क्या होता है? मौज आ गई। और जब आग लगेगी दुनिया वाले रोएंगे और आप क्या होंगे? खुश होंगे, वाह इस संसार से छुटकारा मिला, अब हम अपने घर जाते हैं, नाटक पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं, ये फाइनल ड्रेस छोड़ो, जो भी पुराना रह गया था अब इसे उतारो और घर चलो, ऐसा अनुभव हो। उसके लिए ऐसा अनुभव, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। योग युक्त का मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को बनाना पड़े, अपने विचारों को, अपनी सोच को, कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण है, उसमें कोई अकल्याण की बात नहीं। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे, موج میں رہیں گے, ان کی بدھی میں رہے گا کہ ہم تو پرانا شریر چھوڑ اپنے سویٹ ہوم میں جائیں گے. بس ان کی بدھی میں اور کوئی بات آئے گی نہیں, اب یہ پرانا شریر چھوڑنا ہے, اب گھر جانا ہے, پھر آئیں گے نئی پاون دنیا میں, نئے شریر میں, نئے ڈراما کے انوسار. ڈراما تو یہی رہے گا پرنتو نیا کلپ شروع ہوگا, ہمارا پھر سے ریپیٹ ہوگا ڈراما. اوم شانتی. روحانی باپ بیٹھ روحانی بچوں سے روح ریحان کرتے ہیں اتوا روحوں کو سمجھاتے ہیں, کیونکہ روحوں نے بھکتی مارگ میں بہت یاد کیا ہے. سب عاشق ہیں کس کے؟ ایک معشوق کے. اس معشوق شیو بابا کا چتر بنا ہوا ہے, ان کو بیٹھ پوجتے ہیں. ان سے کیا مانگنے چاہتے ہیں وہ پتہ نہیں ہے. پوجتے تو سب ہیں, شنکراچاریہ بھی پوجا کرتے ہیں, سب ان کو بڑا سمجھتے ہیں. بھل دھرم ستھاپک ہیں پرنتو وہ بھی پنر جنم لیتے لیتے نیچے اترتے. ابھی سب پچھاڑی کے جنم میں آ کر پہنچے ہیں بابا کہتے ہیں تم چھوٹے بڑے سب کی وان پرست اوستھا ہے, میں تم سب کو واپس لے جاتا ہوں, مجھے بلاتے ہی ہیں کہ پتت دنیا میں آؤ. کتنا ریگارڈ رکھتے ہیں, پتت دنیا پرائے راجے میں آؤ, ضرور دکھی ہوں گے, تب تو بلائیں گے. گایا جاتا ہے دکھ ہرتا سکھ کرتا تو ضرور چھی چھی پرانی پتت دنیا میں اور پرانے پتت شریر میں آنا پڑے. وے بھی تمو پردان شریر میں, پتت بھی تمو پردان, تھوڑا پتت نہیں پورا پتت, ستو پردان دنیا میں. مجھے کوئی یاد بھی نہیں, جائے گا کہاں, اس لیے جاتا بھی نہیں, یاد ہی نہیں کرتا تو کوئی جائے کیوں, نہیں کرتا. ڈراما انوسار سب کو میں سکھی بنا لیتا ہوں, سب کو میں سکھی ڈراما انوسار, بس میں تو آ کے گائیڈ کرتا ہوں. جنہوں نے سکھی بننا ہوتا ہے وہ اپنا سن کر کے اپنے آپ کو اتنا سکھی بنا لیتے ہیں. بدھی سے کام لینا ہے کہ ستیوگ میں ضرور آدی سناتن دیوی دیوتا دھرم ہوگا, اور ست سنگوں میں تو صرف شاستر پڑھتے پڑھتے نیچے اترتے جاتے ہیں. دل دل میں پڑھنے والے دکھی ہوتے ہیں. یہ ہے ہی دکھ دھام, وہ ہے سکھ دھام. باپ کتنا سہج کر کے سمجھاتے ہیں کیونکہ بیچاری ابلائیں کچھ بھی نہیں جانتی. کوئی کو بھی یہ پتا نہیں کہ پھر واپس بھی جانا ہے یا سدا پنرجنم لیتے ہی رہنا ہے. ابھی تو سب دھرم والے ہیں, پہلے سورگ تھا تو ایک ہی دھرم تھا. سارا چکر تمہاری بدھی میں ہے, کوئی اور کی بدھی میں یہ باتیں رہ نہ سکے. وے تو کلپ کی آیو ہی لاکھوں ورش کہہ دیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے گھور اندھیارا. گیان ہے گھور سوجرا. अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संगों में होती नहीं, ये बातें और सत्संगों में होती नहीं, वे सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, अभी तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है, यह पुरानी दुनिया, कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म, एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिट खिट है, सबकी एक दो में खिट खिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण, मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है, देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। जिसको पता हो कि उन्हों इन्हों का भी राज्य था, एक भी नहीं, जिनको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, ठीक है। तो ये दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, और बाबा के अनन्य बच्चे भी कहते हैं, क्या कहते हैं समझते नहीं है, समझते नहीं है, कहते हैं, परंतु समझना भी है। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं, बाबा अपने लिए कह रहे हैं, मैं हर 5000 साल बाद सिर्फ 100 साल के लिए संगम युग में आता हूं। बस ये है शिव बाबा का पार्ट, किसका पार्ट लंबा, हमारा पार्ट लंबा है, जो शुरू से लेके लास्ट तक पार्ट बजाते हैं। शिव बाबा तो सिर्फ 100 साल के लिए पार्ट बजाने के लिए आता है, वो भी अपना शरीर बनाना नहीं आता है, आके दूसरे के शरीर को उधार लेकर के हमें समझाता है और फिर चला जाता है, फूंक मार के चला जाता है, ठीक है कि नहीं। ये बात ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। परमात्मा का पार्ट क्या है, हम जिसे भगवान समझते हैं उसका पार्ट क्या है ये हमारी बुद्धि में रहे। वो है रास्ता दिखाने वाला और हम है उस रास्ते पर चलने वाले। बच्चों को आकर सेवा करता है, मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला, आया देश पर आए, और इनका अर्थ भी नहीं जानते। भजन में तो गाएंगे परंतु अर्थ नहीं समझते, इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है। सार का मतलब क्या होता है? सारा व्यर्थ निकाल के फेंक देना, जैसे संतरा है अनार है उनका जूस निकालना है, सार बोलते हैं जूस को, रस को, ठीक है नहीं? सारा रस निकाल करके जो हमारे लिए वेस्ट है उसको निकाल देना है और जो बेस्ट है वो दे देना। तो बाबा आकर जो भी शास्त्रों पुराणों में ग्रंथों में गपोड़ कहानियां हैं उन सब को हटाकर जो रस है सार है निचोड़ है वो हमें आकर बताते, जो व्यर्थ है उसको निकाल देते हैं। रोजाना यही काम कर रहे हैं कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल, दोजख से निकाल बहिष्ट में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल और संगम युग पर है बनता है फूलों का बगीचा जो अब बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सुखी रहते हो, सतयुग में तुम सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कलप सुख फिर आधा कलप दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है। इनकी एंड होती नहीं, इनकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का, उनको भी सुख जाती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी, टेस्ट क्या आएगी, क्या स्वाद आएगा। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे, अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, हम कितने धनवान थे, बहुत धनवान थे। जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था, तब आता है ना पता। पहले जब होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जब दिवाला मारता है ना तब याद आता है, ओहो हमारे पास कितने खेत थे, कितने महल थे, कितना क्या था। भारत सौकार था, पैराडाइज था, सोने की चिड़िया था, और अब देखो कितना गरीब है। गरीबों पर ही रहम पड़ता है, अब एकदम कंगाल बन पड़ा है, पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं वर्ल्ड से, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े, अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वे बाई प्लाट, वे बाई प्लाट हैं। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं, भारतवासियों के ही 84 जन्म है, भारतवासियों के ही क्या है 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जाति इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं, जास्ती इन बातों से कोई फायदा नहीं। ये भी वेस्ट ऑफ टाइम, इतने समय अगर बाप की याद में रहते तो ये बाप की याद में नहीं थी उनका टाइम निकालना, नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इस निकालने से आपके जीवन में तो कोई सुधार नहीं आ रहा। ठीक है, वो निकाला, एक बार निकाल लिया, बस ठीक है। अब उसको ये समझ कर बैठना कि यही हमारा हथियार है, इससे कोई लाभ होने वाला, मुझे जीवन परिवर्तन करने में लाभ होना है। अब पता लग गया कि कृष्ण का जन्म हो गया, उससे क्या होना है? बस उससे ये समझो कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, अब मुझे भी कृष्ण के साथ जाने के लायक बनना है, मुझे अपने जीवन को परिवर्तन करना है, तब तो कोई फायदा है। बाकी ये कहना जी हाँ जी कृष्ण का जन्म हो गया है, मुझे पता लग गया है, तो पता लग गया तो क्या हो गया है?
आपने क्या बताया?
तो वो तो उस उनका पता लग गया तो क्या हुआ? तुम अपने जीवन को सुधारो तब तो है, और नहीं सुधारते तो क्या है? हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस चलना है, अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है, तुम्हारी सुनवाई होती है, बाप फिर से तुमको सुख धाम में ले जाते हैं, बाप तुमको सुख धाम में फिर से ले जाते हैं। हर 5-10 साल बाद आते हैं, कान से पकड़कर ले जाते हैं। कान से क्यों पकड़ते हैं? नाक से पकड़ती है माया, और कान से पकड़ते हैं बाबा, क्योंकि ज्ञान की भू भू कान में आके करते हैं। तो पहले सबसे पहली मेरी जो है ना, यही है शिव बाबा, जो रोज आना आज पहले यही कहा ना कि रोज आना तुम्हें कहा जाता है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। क्यों क्यों कहा जाता है? ताकि आप सुधर जाएं। और हमने ठेका ले रखा है, हमने परमानेंट लिख रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। भारत के उत्थान और पतन की भी एक जैसी भी जैसे एक कहानी है, भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब ये है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, इनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं, वहां ये नॉलेज नहीं होगी, वहां ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्री मत पर चलने वाले होंगे, वे सब कुछ देखेंगे, वे सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब क्लास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है, कैसे गांव गांव में खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा, समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा, यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, खारे पानी पर होते नहीं, तो ये रहेंगे नहीं, तो ये रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे, बहुत उपद्रव होंगे, बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, एक दो तीन चार पांच नहीं, कितने मरेंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहां से आएगा, अनाज कहां से आएगा, वो लोग भी समझते हैं, आफते आनी है, मनुष्य मरेंगे, तो जो योग युक्त होंगे वे उस समय मौज में रहेंगे, कहां रहेंगे, मौज में रहेंगे। मिरवा मौत मलूक का शिकार, बर्फ की बरसात पड़ने से, बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी होंगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे, गॉड को दोष कैसे देंगे, ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया, ऐसे भी नहीं, ठीक नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, कैसे जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं, बाप समझाते हैं, पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा है, आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है, शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे से ऊंचे बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है, आज कल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते, सबके साथ लगाते श्री, श्रीमती श्री फलाना श्री, अब श्रीमती तो एक बाप, श्री मत तो एक बाप की है, श्रेष्ठ मत तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की है। विकार में जाना क्या ये श्रीमत है, विकार में जाना क्या ये श्रीमत है, ये तो है ये भ्रष्टाचारी दुनिया, और भ्रष्टाचारी दुनिया की भ्रष्टाचारी मत, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, और ये है भ्रष्टाचारी दुनिया की भ्रष्टाचारी मत। तो श्रेष्ठाचारी मत तो सिर्फ और सिर्फ एक बाप ही देते हैं, और कोई दे नहीं सकता। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, क्या कहता है बाबा, बस अपने को आत्मा समझ, देह और देह के सब संबंधों को भूल, मुझ एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाए। एक ही लाइन रट रखी है बस बाबा ने, उसको घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से रोजाना कहता रहता है, हमारा सिर खाता रहता है, सिर खाता है हमारा, सिर में टोपी रखी है ताकि कुछ भी ना खा सके, सिर खाना माना सिर में जो भी किचड़ा है वो निकालता रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, निकालता नहीं है, हम बोल देते हैं इसे, सिर्फ उस किचड़े को निकालने का तरीका बताता है। निकालना हर आत्मा को खुद है, क्योंकि बात को थोड़ा सा भी हम गलत बोल देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर सारे समय लेते हैं, भाई निकालेगा, अपने आप निकाल लेगा, उसका काम है, हम क्यों निकाले, हम क्यों मेहनत करें। परंतु हमें याद रखना है, मेहनत हमको करनी है, मेहनत बाबा को नहीं करनी, उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाथ पांव ही नहीं, कैसे करे, उसका कोई बेचारा भी है, उसका कोई बाप भी नहीं, कोई उसको हाथ पैर दे दे। स्वयं को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने आप को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ मारती है तो चक्र उठा के रख देते हैं, ले नहीं नहीं फिराता, बस तो मेरी अच्छी मौसी है, माया मौसी के पास चले जाते हैं, तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकते, और तुम ब्राह्मण अभी अच्छे अभी खराब, तुम बदलते रहते हो। माया थप्पड़ लगाए भूतों को गिरा देती है तो उनकी माला कैसे बनेगी, दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों के डायरेक्ट, तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाप को अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। बाबा आए भी हैं तो इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, जब 60 वर्ष की आयु हुई, ये है ना पकड़ने वाली बात, बाबा ने अपना सबूत तो दिया है, फिर ये मुकर जाता है, सबूत तो दिया है फिर मुकर जाता है, क्या करें। बाबा खुद कह रहा है कि मैं कब आया, 60 साल की उम्र में आया, तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो 92 साल के थे, 92 साल के थे ना, 92 थे ना, तो 33 साल हो गए ना, 60वें साल में प्रवेश किया तो 33 साल हो गए ना, ये नोट करने वाली बात है,
ये आप नोट करते रहते हो,
33 साल का हो गया, 33 साल का पाठ पूरा किया, ये मुरली में सबूत है, ये 30 तक, हाँ जी
बाबा 100 साल की गारंटी लेता है, 100 साल के ऐसा ही भाग जाता
है, ये सबूत है कि बाबा कब प्रवेश किया, बाबा ने मुरली में कहा, और फिर कहता है इसको भी नहीं पता मैंने कब प्रवेश किया, और मैं बताऊंगा नहीं, और बता भी देता है, हम
बताऊंगा भी नहीं।
हमारी वो बिटिया है ना, वो कहती छोटे वाली सरप्राइज गिफ्ट, बता देती थी, किसी को बताना नहीं, सरप्राइज गिफ्ट है, ये भी बाबा ऐसे सरप्राइज गिफ्ट देता है। वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है, मैं तो हूं सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में वे है भक्ति के गुरु, मैं हूं ज्ञान मार्ग का प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं, मुक्ति में जाकर फिर कहाँ आते हैं, जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे फिर पीछे आते रहते, दूसरे फिर पीछे आते हैं, हर एक को पहले सुख और फिर दुख भोगना पड़ता है, चाहे कोई सतयुग में आवे, चाहे त्रेता में आवे, चाहे द्वापर में आवे, तो चाहे कलयुग में आवे, जब आएगा तो पहले तो सुख भोगेगा और फिर दुख। ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये संसार का ड्रामा है। तब तो कहते हैं ओ प्रभु तेरी लीला, तेरी लीला तू ही जाने और न जाने। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है, तुम हो लाइट हाउस। तुम कौन हो? लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। और शिव बाबा है वो लाइट जो रास्ता बताता है। लाइट हाउस दिखाई देता है, वो लाइट दिखाई भी नहीं देती। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई नहीं जानते। तिथ तारीख दोनों ही नहीं है। तिथ तारीख क्यों? क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते, गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मां एकम याद करते रहो तो पाप कट कट जाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बनना है। डायमंड बनना मतलब बेदाग, जिसमें कोई अवगुण ना हो। और फिर डायमंड बन डायमंड को देखना है। डायमंड मानना यहां आत्मा, स्वयं को आत्मा, बेदाग आत्मा समझ बेदाग आत्माओं को ही देखना है। और फिर बेदाग डायमंड बनना है। पहले डायमंड समझो, मैं आत्मा हूं, फिर आत्मा को देखो और फिर बेदाग डायमंड बनो। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना है। चाहे कोई आत्मा काला कोयला, काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, संबंध संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघन अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे, डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े, जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करो, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है। अव्यक्ति साइलेंस मीन्स एकदम शांत, संकल्प भी ना आए। उस अवस्था में जाएंगे तभी फरिश्ता बनेंगे, और संकल्प आए तो सर्व के कल्याण का आए। जैसे अंतरिक्षयान, हवाई जहाज वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो, ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना दे, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।